समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़के, तेरी धूप से रोशन तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा मैं तेरा परिंदा, है अर्जी दीवाने की जहां बोर सुहानी देखी, एक रोज वही मेरी शाम हो, कभी याद करे जो जमाना में शामिल मेरा नाम हो। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़के, तेरी धूप से रोशन तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा मैं तेरा परिंदा।
जी हाँ, सदके जाएं हम अपने इस सबसे विलक्षण प्रतिभा और समृद्ध संसाधनों के देश पर, जिस पर मर मिटने को देश की सेना और देश का हर नागरिक हमेशा तैयार रहता है। सेनाओं की तो बात ही क्या, जो हमें हमारे प्रिय देश की आन बान और शान, जिनके अद्भुत शौर्य की वजह से ही देश चैन की नींद सो पाता है। जान से प्यारा वतन है हमारा, हम तो इसके पहरेदार रहेंगे। जान से प्यारा वतन है हमारा, हम तो इसके पहरेदार रहेंगे। 100 जन भी लुटा दें इसके लिए, तब भी इसके कर्जदार रहेंगे। जी हाँ, देश का कर्ज ना कोई चुका पाया है और ना ही चुका पाएगा, क्योंकि देश हमसे नहीं, हम देश से हैं। वेल, इसी प्रारंभिक विचार के साथ आइए शुरू करते हैं न्यूज मैगजीन कार्यक्रम आज सवेरे, जिसे लेकर आप पहुंचे हैं श्रोताओं के ही अपने रवि कपूर और शगुन चोपड़ा। स्वीकार कीजिए हम दोनों का नमस्कार।
Namaskar, good morning dear listeners. As the sun rises over our land, let us pause for a moment and honor the true heartbeats of this nation, our soldiers, guardians of the dawn, standing tall on the front lines where the earth meets the sky. They embody the spirit of sacrifice, courage and unwavering devotion. With every step they take, they walk not just for themselves but for the dreams of every mother, every child, every soul that calls this land home. They face the storm with resolve, and in their hearts they carry the weight of our hopes and our freedom. So as we begin this day, let the winds of freedom sweep across your spirit, for somewhere someone is standing guard, ensuring our tomorrow. With every breath we take, we owe them our respect, our gratitude and our pride. To the warriors who stand without fear, we salute you, for you are the pulse of our nation, the keepers of our peace. On that note, we are pumped to begin our daily news magazine program Aaj Savere with Ravi and Shagun here. Let me brief you about what's coming up, listeners. The latest in national and international news, we'll give you that. We'll provide you metro city updates and some historical information which is related to today, that is 22nd of May 2025. First, let's get started with the headlines, shall we?
बिल्कुल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान के बीकानेर में 26,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उद्घाटन करेंगे। इनमें रेल, सड़क मार्ग, बिजली, जल और नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र से जुड़ी परियोजनाएं शामिल हैं। प्रधानमंत्री अपनी यात्रा के दौरान 18 राज्यों के 86 जिलों के 103 अमृत स्टेशनों का उद्घाटन भी करेंगे। इनमें देशनोक अमृत स्टेशन का उद्घाटन शामिल है। श्री मोदी देशनोक में करणी माता मंदिर का दर्शन करेंगे, जो वास्तुकला का एक अद्भुत उदाहरण है। वे बीकानेर मुंबई एक्सप्रेस ट्रेन को रवाना करेंगे और बीकानेर के पालना में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री देशनोक सहित राजस्थान के 8 स्टेशनों का उद्घाटन करेंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत पुनर्विकास के लिए 1300 से अधिक रेलवे स्टेशनों को चिन्हित किया गया है। इनमें से पहले 103 अमृत स्टेशनों का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान की धरती से करेंगे। श्री वैष्णव ने यह भी कहा कि 2027 तक ऐसे लगभग 500 स्टेशन का विकास कार्य पूरा हो जाएगा। अमृत भारत स्टेशन योजना की रूपरेखा स्थानीय संस्कृति, विरासत और वास्तुकला से प्रेरित है।
Prime Minister Narendra Modi will virtually launch 6 new Amrit railway stations in Madhya Pradesh under the Amrit Bharat Station Yojana. These stations have been developed at a cost of more than 86 crore rupees, keeping in mind the practical requirements as well as the regional cultural features. The passenger-friendly facilities developed at these stations include special entrances, better lighting, newly constructed platforms, luxurious waiting rooms, ticketing services, electronic displays and hygiene facilities. India has launched its aggressive global campaign to further expose Pakistan-sponsored terrorism. Two all-party delegations left for nine-nation tour yesterday. An all-party delegation led by JDU MP Sanjay Kumar Jha left for five-nation tour of Indonesia, Malaysia, South Korea, Japan and Singapore as part of India's diplomatic outreach on Operation Sindoor. Another delegation led by Shiv Sena MP Shrikant Shinde also embarked on a visit to UAE, Liberia, Congo and Sierra Leone to affirm New Delhi's resolve on combating terrorism in all its forms. The delegations will carry India's strong message of zero tolerance against terrorism and apprise about Operation Sindoor. Talking to media before the departure of his delegation, Mr. Sanjay Jha said, terrorism is a part of Pakistan's state policy and they will tell the world how Islamabad has been sponsoring terrorism. Our correspondent reports that seven multi-party delegations have been set up to reach out to the international community on Pakistan's nefarious designs and India's successful anti-terror operation. Foreign Secretary Vikram Misri will brief the delegations today.
विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में उद्योग, व्यापार और आर्थिक कार्य मंत्री मॉर्टिन बोरिसकॉव से मुलाकात की। दोनों पक्षों ने मौजूदा सहयोग को और प्रगाढ़ करने तथा नई संभावनाएं तलाशने पर चर्चा की। डॉक्टर सुब्रमण्यम ने डेनमार्क की संसद के अध्यक्ष सोरेन गाडे से भी मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में आतंकवाद से सख्ती से निपटने में भारत के साथ डेनमार्क की एकजुटता की सराहना की।
India's ambassador to Russia, Vinay Kumar, highlighted the achievements of country's communication industry while addressing the plenary session of the International Conference on Strategic Communications in Moscow. The ambassador yesterday spoke about the role and importance of communication in human civilization and how modern technologies have changed the communication. He also talked of India's communication industry in today's digital age, including recently held WAVES 2025. The conference was organized by the Association of Consulting Companies in the Sphere of Public Relations in partnership with the Ministry of Foreign Affairs and the Ministry of Economic Development. As we celebrate the success of Operation Sindoor, the nation salutes the valor of the Indian soldiers. As a tribute to the armed forces, Akashwani News is presenting a special series. Today, we remember Paramveer Chakravorty, 2nd Lieutenant Arun Khetarpal, who gave supreme sacrifice during 1971 Indo-Pak War. We have a report.
Born in 1950 in Pune, Maharashtra, 2nd Lieutenant Arun Khetarpal was commissioned into the Pune Horse Regiment in June 1971. At the age of just 21 years, he displayed unmatched courage during the Indo-Pak War of 1971. On 16 December 1971, the enemy launched a counter-attack targeting Jarpal in Sakragarh sector under the cover of a smoke screen. As the Indians were heavily outnumbered, a fellow commander from B Squadron requested reinforcement. 2nd Lieutenant Arun Khetarpal was positioned close by with his troops in two tanks and he answered the call for reinforcement. On the way, his troops came under fire from enemy strong points. He fiercely attacked the points, overran defenses and captured many enemy soldiers. During the attack, the commander of the second tank was killed, leaving him alone. But he continued the attack on the enemy strongholds single-handedly until all enemy positions were overwhelmed. Then, racing to B squadron position, he destroyed one enemy tank. During the enemy's second attack, which was followed by a fierce tank battle, 10 enemy tanks were destroyed, and of these, 4 were destroyed by Khitpal alone. His tank was shot and burst into flames, but he continued to destroy the enemy tanks. His tank got hit again and he made the supreme sacrifice while denying the enemy their intended breakthrough. For most conspicuous gallantry in the face of enemy, Second Lieutenant Arun Khitpal was posthumously awarded the Paramveer Chakra in 1972. The nation salutes him. Anupam Mishra, Akashvani News, Delhi.
और शगुन अब बात आईपीएल क्रिकेट की. आईपीएल टी20 क्रिकेट में मुंबई इंडियंस दिल्ली कैपिटल्स को 59 रनों से हराकर प्लेऑफ में पहुंचने वाली चौथी और अंतिम टीम बन गई. इसके साथ ही कल रात मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में आईपीएल 2025 में दिल्ली कैपिटल्स का सफर खत्म हो गया. आज गुजरात टाइटन्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स से होगा. ये मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शाम 7:30 बजे शुरू होगा.
Well, yes, continuing with sports there, shooter Kanak has bagged India's first gold medal at the ongoing International Shooting Sport Federation ISSF Junior World Cup in Seoul, Germany. Kanak outperformed Anna Dulcea of Moldova, a two-time Olympian and reigning European champion, by 1.7 points. Earlier, Adrian Karmakar opened India's medal account with a silver in 50-meter rifle prone event. Now talking about squash, India's Akanksha Salunkhe has advanced to the quarterfinals of the Irish Open 2025 in Dublin, Ireland. She will take on Madeleine Hyland of Norway tonight. Early in the pre-quarterfinal last night, Akanksha defeated the 8th seed Nora Villard of France 11-9, 11-9, 11-9.
अब हैदराबाद, बेंगलुरु और चेन्नई के समाचारों की जानकारी दे रही हैं शगुन चोपड़ा.
यस रवि, आई विल बिगिन विद चेन्नई.
जी.
Scientists of the Indian Institute of Madras and Czech Academy of Sciences have studied the brainwave data from 176 people with serious depression. The study is to benefit the patients to access the right treatment method quickly. The data from the neurophysiological test used to measure and record the brain's electrical activity can predict if treatment such as stimulation or antidepression has an effect in the first week. The early prediction can help patients access the right treatment method quickly. Combining EEG with advanced machine learning, scientists looked for measurable signals or characteristics such as electrical activity patterns or chemical levels that indicate normal brain function in presence of psychiatric conditions in the first week of taking antidepressants, and used computers to find patterns. The scientists found that subtle shifts in brain activity captured in these initial days could offer a crucial early signal, potentially sparing patients weeks of ineffective therapy and accelerating treatment outcomes. A machine learning algorithm achieved accuracy of 73% in identifying patients who responded to treatment based on early EEG changes. I have one more update from Chennai. Tamil Nadu Online Gaming Authority to at least 25 firms running online gaming apps for violating the state's guidelines have had the desired impact, with the companies now not allowing players to enter the games after midnight. Among other restrictions are warning pop-ups, cash limits, time restriction options, and the apps not being available from midnight to 5 a.m. Almost all the apps had been violating these rules until last month, mostly due to cricket games extending till late night because of super overs and rain. Now, I will move on and I'll give you the updates of Bengaluru.
Ji.
Karnataka Deputy Chief Minister D.K. Shivakumar has informed that out of 211 water logging areas in Bengaluru, works were carried out to remove logging in 166 locations. He was addressing media persons after inspecting areas that came under flooding during the last Sunday rains. D.K. Shivkumar said that 44 locations will be taken up and the problem of water accumulation will be dealt with. Speaking about the problems in Mahadevpura, which is one of the tech hubs in the city, Shivakumar said that road widening is the only solution and a 150 feet wide road is proposed in the area. Moving on, the update from Hyderabad. Prime Minister Narendra Modi will be virtually inaugurating three railway stations across Telangana, including an all-women-operated railway station in Begumpet. Later this morning, as we were also talking to about you listeners about this update, Begumpet in the headline section, right?
Ji.
Begumpet, the first all-women-operated railway station in the South Central Railway, besides Karimnagar and Warangal stations, has been redeveloped at an estimated cost of 25 crore rupees each, with modern passenger amenities and reflecting the local culture and heritage. Union Minister for Coal and Mines, G. Kishan Reddy, said the three Amrit Bharat stations in Telangana, Begumpet, Warangal and Karimnagar, are all set to be dedicated to the public. The Prime Minister will be virtually inaugurating them, along with about 100 other stations across the country. So these are the updates from Chennai, Bengaluru and Hyderabad. Now Ravi will give you the updates from Delhi, Mumbai and Kolkata.
Ji, bilkul nazar daal lete hain Rajdhani Delhi, Mumbai aur Kolkata ke samacharon par. Shuruaat Delhi se hi kar lete hain.
Ji.
Rajdhani ki sadakon par आवारा गायों की रोकथाम के लिए दिल्ली सरकार ने कल शहर की गौशालाओं और डेयरी मालिकों के साथ बैठक की। इस अवसर पर दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा ने संबंधित विषयों पर उनके साथ चर्चा की। संवाददाताओं से बातचीत में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी की पूर्व दिल्ली सरकार ने लोगों से झूठे वायदे किए, जिसके कारण वर्तमान में सभी डेयरियों की हालत बहुत बुरी है। उन्होंने बताया कि इन लोगों के पास पीने का पानी, गोबर गैस प्लांट और सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है। इन मूलभूत सुविधाओं के अभाव के कारण दिल्ली की सड़कों पर आवारा पशु दिखते हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार समाधान निकालने का पूरा प्रयास करेगी। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देश के सशस्त्र बलों के पराक्रम, बहादुरी और वीरता के सम्मान में दिल्ली सहित पूरे देश में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में शहर के तालकटोरा स्टेडियम से कर्तव्य पथ पर कल खालसा तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसका नेतृत्व दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने किया। इस यात्रा में लोगों ने बढ़चढ़ कर भाग लिया। यात्रा में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के अलावा दिल्ली के कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा और आशीष सूद सहित अन्य नेता शामिल हुए। इस अवसर पर श्रीमती गुप्ता ने कहा कि ये रैली भारत के वीर जवानों की साहसिक गाथाओं को जन जन तक पहुंचाने और युवाओं को राष्ट्र सेवा के लिए प्रेरित करने का प्रतीक है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि ये खालसा तिरंगा यात्रा भी यही संदेश देने के लिए है कि देश के सिख समाज का हर एक व्यक्ति मातृभूमि पर मर मिटने के लिए तैयार खड़ा है। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं मुंबई की ओर। और शकुन, जैसा कि हम शुरुआत में ही बता चुके हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत देश भर में 103 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इनमें से चार मुंबई में हैं। रेल मंत्रालय द्वारा दिसंबर 2022 में शुरू की गई अमृत भारत स्टेशन योजना का उद्देश्य 1300 से अधिक स्टेशनों को मल्टी मॉडल एकीकरण और भविष्य के लिए तैयार सुविधाओं के साथ आधुनिक हब में बदलना है। विभिन्न स्टेशनों पर इन कार्यों की आधारशिला अगस्त 2023 और फरवरी 2024 के बीच रखी गई थी।
जी।
और बढ़ते हैं कोलकाता की ओर। अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 अमृत भारत रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन करेंगे। इन स्टेशनों में पूर्वी रेलवे के सियालदह डिवीजन के कल्याणी घोषपारा और पानागढ़ तथा दक्षिण पूर्वी रेलवे के अद्रा डिवीजन के जॉयचंडी पहाड़ शामिल हैं और तैयारियां भी अंतिम चरण में हैं। लोग उद्घाटन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस योजना के तहत अच्छी तरह से सर्कुलेटिंग एरिया, कॉनकोर्स, दिव्यांगों के लिए सुविधाएं और कई अन्य सुविधाएं शुरू की गई हैं। तो ये थे अब तक के कुछ मेट्रो समाचार। AIRFM गोल्ड पर श्रोता सुन रहे हैं कार्यक्रम आज सवेरे रवि और शगुन के साथ। और कार्यक्रम आज सवेरे में अब बात मौसम की। तो मौसम की बात करें शगुन, मौसम तो कल से दिल्ली में बहुत ही सुहाना हो गया है। और इतना अच्छा लग रहा है कि क्या बताएं। राष्ट्रीय राजधानी में सामान्यतः बादल छाए रहेंगे तथा मध्यम वर्षा होने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 40 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। मुंबई की अगर बात करें तो वहां सामान्यतः बादल छाए रहेंगे और तेज वर्षा होने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। कोलकाता में भी आंशिक रूप से बादल छाए रहने तथा मध्यम वर्षा या गरज के साथ तूफान आने का अनुमान जताया गया है। न्यूनतम तापमान 25 और अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। वैसे मौसम इतना अच्छा हो गया है शगुन कि देखिए हमने फुल स्लीव्स के अपने शर्ट्स पहनी हुई हैं, लेकिन स्टूडियो में उसके बावजूद हमें कितनी ज्यादा सर्दी लग रही है।
True that, and the weather it changed completely. I mean, kind of overnight thing. We can use this phrase over here. Overnight it changed.
बाकी के शहरों में मौसम का क्या हाल रहने वाला है ये आप बताएं।
Yes, I'm going to talk about Chennai, Ravi. Chennai is expected to have a partly cloudy sky with the possibility of moderate rain or thunderstorm. The minimum temperature was 25 degrees Celsius, and maximum it'll be around 35 degrees. Now, Bengaluru is expected to have a partly cloudy sky with one or two spells of rain or thunder showers. The minimum temperature was 20 degrees Celsius and maximum will be around 27 degrees. Hyderabad now, it is expected to have a generally cloudy sky again with one or two spells of rain or thunder showers here as well. The temperature will hover between minimum of 23 degrees and a maximum of 34 degrees Celsius there.
और शगुन, इससे पहले कि हम और आगे बढ़ें और अपने श्रोताओं को ये बताएं कि आज के दिन इतिहास में क्या क्या हुआ, हम बताना चाहेंगे कि आज इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी यानी कि विश्व जैव विविधता दिवस, या फिर कह लीजिए कि विश्व जैव विविधता संरक्षण दिवस है, जो प्रतिवर्ष संपूर्ण विश्व में 22 मई को मनाया जाता है। ये एक अंतर्राष्ट्रीय पर्व है, इसे संयुक्त राष्ट्र संघ ने आरंभ किया था और जैव विविधता सभी जीवों एवं पारिस्थितिकी तंत्रों की विभिन्नता एवं असमानता को कहा जाता है।
Yes, listeners, the International Day for Biological Diversity. The theme, let's tell our listeners, the theme for 2025 edition, it is Harmony with Nature and Sustainable Development. Well, biodiversity has faced numerous threats, including habitat loss, overexploitation of natural resources, pollution, climate change, which is being driven by human activities and has led to the extinction of many species and the degradation of ecosystems worldwide. And to address these pressing issues and raise awareness about the importance of preserving biodiversity, United Nations established the International Day for Biological Diversity.
जी, और आइए अब पलट लेते हैं इतिहास के पन्नों को, जान लेते हैं कि इतिहास में आज के दिन क्या-क्या हुआ।
Well, listeners, taking you way back in time, in the year 1849, U.S. President Abraham Lincoln was granted a patent for a boat lifting device. He was the only U.S. president to have a patent. In the year 1906 now, Wright brothers got U.S. patent for flying machine. In the year 1972, Richard Nixon arrived in Moscow, the first visit by U.S. president to the Soviet Union.
जी, 1990 में उत्तरी एवं दक्षिणी यमन के विलय के साथ संयुक्त यमन गणराज्य का अभ्युदय यानी कि जन्म हुआ। 1992 में बोस्निया, स्लोवेनिया तथा क्रोएशिया संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य बने और 2008 में मुंशी प्रेमचंद की अमरकृति निर्मला सहित हिंदी की 5 रचनाओं के अनुवादक वर्ष 2007 के साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए चुने गए। और शगुन, अब समय हो गया है कुछ प्रमुख व्यक्तियों की पुण्यतिथियों और जयंतियों के बारे में अपने श्रोताओं को जानकारी देने का। तो इस क्रम में आज सबसे पहला नाम है गोविंद राम सी कसरिया का, जिनका जन्म हुआ था 19 अक्टूबर 1888 को और निधन 22 मई 1946 को। वे स्वतंत्रता पूर्व भारत के सबसे सफल व्यवसायियों में से एक थे। उन्हें भारत के कॉटन किंग के नाम से भी जाना जाता था और वे अपने समय के बहुत बड़े उद्योगपति थे।
Yes, right. And it was in such an uncertain business time and industrial climate that he started his career as a cotton trader in Mumbai.
जी.
Now, moving on, we're also remembering Arthur Conan Doyle, writer and also physician. He created the character, very famous one, Sherlock Holmes in 1887 for a study in Scarlet. The first of 4 novels and 56 short stories about Holmes and Dr. Watson. Well, Sherlock Holmes was a very good detective and Conan Doyle's stories about him were exciting, mysterious and full of adventure. Arthur Conan Doyle.
और पुण्यतिथियों में अब जिक्र रीवा प्रसाद द्विवेदी का, जिनका जन्म हुआ था 22 अगस्त 1935 को और निधन 22 मई 2021 को। रीवा प्रसाद द्विवेदी काशी के प्रकांड विद्वान थे। उन्होंने साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में कई प्रतिमान गढ़े। वे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्कृत विद्याधर्म विज्ञान संकाय के पूर्व संकाय प्रमुख भी रहे और यही नहीं, साहित्य शास्त्र के साहित्य विभाग में वे विभागाध्यक्ष भी रहे थे।
Yes, listeners, today we are also remembering Vetturi Sundararama Murthy. well, mononymously by his surname Vithuri, Indian poet and lyricist who is known for his works in, let me tell you, Telugu literature and cinema. He's a recipient of the National Film Award, Filmfare Awards and other honors as well. And his career in Telugu cinema spanned for more than four decades. Vithuri Sundararama Murthy here.
और अब जानकारी हिंदी सिनेमा जगत के प्रसिद्ध संगीतकार राम लक्ष्मण के जोड़ीदार लक्ष्मण की, जो राजश्री प्रोडक्शंस की ब्लॉकबस्टर फिल्में मैंने प्यार किया, हम आपके हैं कौन और हम साथ साथ हैं में किए गए अपने काम के लिए खास तौर पर जाने जाते हैं। आपका जन्म 16 सितंबर 1942 और निधन 22 मई 2021 को हुआ। संगीतकार लक्ष्मण का असली नाम शगुन विजय पाटिल था। वे संगीतकार जोड़ी राम लक्ष्मण में से एक लक्ष्मण थे, जबकि उनके जोड़ीदार राम यानी कि राम सुरेंद्र थे। राम सुरेंद्र के निधन के बाद विजय पाटिल यानी लक्ष्मण ने अपने नाम के साथ राम भी जोड़ लिया और इस प्रकार वे राम लक्ष्मण के नाम से भी जाने पहचाने लगे। सबसे पहले मराठी फिल्म मेकर और अभिनेता दादा कोंडके ने राम लक्ष्मण को अपनी फिल्म पांडू हवलदार के लिए बतौर संगीतकार साइन किया था। इसके बाद शगुन सूरज बड़ जातिया की फिल्मों में उन्होंने कई हिट गाने दिए। उन्होंने 70 से अधिक फिल्मों में संगीत दिया। हिंदी फिल्मों के अलावा राम लक्ष्मण ने मराठी और भोजपुरी फिल्मों के लिए भी काम किया। राम लक्ष्मण की मुख्य फिल्मों में मैंने प्यार किया, पत्थर के फूल, 100 डेज, प्रेम शक्ति, मेघा, तराना, हम आपके हैं कौन और हम साथ साथ हैं सहित अन्य। तो आइए फिर सुन लेते हैं उन्हीं के संगीत निर्देशन की एक छोटी सी मधुर मेडली।
जन्मों के साथ ही हम साथ साथ है,
जन्मों के साथ ही
हम साथ साथ है।
और अब बात जयंतों की, तो आज इसमें सबसे पहला नाम है महान भारतीय समाज सुधारक और ब्रह्म सभा के संस्थापकों में से एक राजा राम मोहन रॉय का, जिनका जन्म हुआ था 22 मई 1772 को और इन्होंने इस संसार से विदा ली 27 सितंबर 1833 को। राजा राम मोहन रॉय को आधुनिक भारतीय समाज का जन्मदाता भी कहा जाता है और जैसा कि पहले ही बताया गया, वे ब्रह्म समाज के संस्थापक, भारतीय भाषाई प्रेस के प्रवर्तक, जन जागरण और सामाजिक सुधार आंदोलन के प्रणेता और बंगाल में नव जागरण युग के पितामह थे।
Yes, now I'm going to talk about Wilhelm Richard Wagner, a composer, theater director, essayist and also conductor who is chiefly known for his operas. Some of his mature works were later known as music dramas and I have picked one such opera, listeners, for you to listen in. This is Ride of the Valkyrie.
और अब हम बात करते हैं हिंदी और रूसी साहित्य के आधुनिक सेतु निर्माताओं में से एक रहे मदन लाल मधु के बारे में, जिनका जन्म हुआ 22 मई 1925 को और निधन 7 जुलाई 2014 को। और
वेल टुडे वी आर आल्सो रिमेंबरिंग विक्टर ह्यूगो, पोएट, एसेइस्ट, प्लेराइट एंड आल्सो an author. Well, his literary career that spanned more than 60 years, he wrote a variety of genres and forms. His novels, let me name just two of them, Hunchback of Notre Dame and Les Miserables.
और चलते चलते अब आज का विचार के शून्य से प्रारंभ होकर शून्य में ही विलीन हो जाने को जीवन कहते हैं। इसी विचार के साथ इजाजत दीजिए रवि कपूर और शगुन चोपड़ा को आज सवेरे कार्यक्रम यहीं संपन्न करने की।
Well, listeners, stay tuned for coming up next is Samachar Prabhat, our Hindi news bulletin, followed by morning news in English at 8:15 a.m. Well, thank you so much, listeners, for tuning in.
Namaskar.
Namaskar. यही है रंग। छाव तू ये जीवन है।